الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम तसहील बहश्ती ज़ेवर में से किताबुल अवर वल इबाहा पढ़ने जा रहा, उसमें से हुकूक वालिदैन पढ़ रहे हैं जो कि पेज नंबर 313 के ऊपर शुरू होते हैं, और इस वक्त हम 315 के ऊपर पढ़ रहे हैं, हदीस नंबर 3 जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन के हुकूक की ताकीद और उनकी अदायगी के अहकाम कुरान व हदीस और फिकही इबारात की रोशनी में बयान की हैं। ये 3 अहादीस बयान की हैं और भी हैं एक्चुअली इसके बाद भी, तो ये बड़ी चुन चुन करके हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस यहाँ पर बयान फरमाई हैं वालिदैन के हुकूक के मुतालिक, और फिर उनकी तशरीह बयान की है, फिक्ही इबारात की रोशनी में तशरीह बयान की है। तो उसमें से जो तीसरी हदीस थी वो हम पिछली क्लास में पढ़ तो चुके थे, लेकिन उसकी अभी एक्सप्लेनेशन चल रही थी कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है, तो अगर उसके माँ बाप दोनों जिंदा हों उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर कोई एक जिंदा हो तो एक दरवाज़ा खुल जाता है, और अगर वालिदैन की नाफरमानी करता है तो उसके लिए दोजख के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर एक की नाफरमानी करता है तो एक दरवाज़ा खुल जाता है। इसी हदीस में है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म ही करते हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया कि अगरचे वो दोनों जुल्म ही करते हों। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा ताकीद इसके अंदर माँ बाप के बारे में है कि उनकी नाफरमानी नहीं करनी है, हत्ता के अगर वो जुल्म ही करते हों। तो अब इस हदीस की शरह क्या है, इसकी तशरीह क्या है? तो इस हदीस की शरह में मिरकात में लिखा है कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला की अताअत करने का मतलब ये है कि उनके हुकूक की अदायगी में अल्लाह ताला की अताअत करे। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने जो जैसा हुक्म दिया है, जो हुक्म दिया है हुकूक की अदायगी में, ठीक है, यानी उनका ये हक है, ये हक अदा करना है, अल्लाह ताला का हुक्म है तो ये हक अदा करना है, अल्लाह ताला का हुक्म है तो ये हक अदा करना है। ठीक है, तो उनके हुकूक अदा करे, और उनमें ये भी है कि वालिदैन की अताअत सिर्फ उनकी अताअत नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की अताअत है जिसकी अल्लाह ताला ने खास तौर पर ताकीद फरमाई है, इसलिए उनकी अताअत अल्लाह ताला की अताअत समझकर करनी चाहिए। ठीक है, उनकी अताअत अल्लाह ताला की अताअत समझकर करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जुमला जो है वो बड़ा सादा सा जुमला लगता है, लेकिन इस जुमले के अंदर इंतहाई यानी गहराई है, और इसी एक जुमले को दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसी एक जुमले को दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मतलब दोनों तरह से? यानी हक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको बातिल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सच के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको झूठ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, झूठ के लिए इस्तेमाल पहले पढ़ लेते हैं या पहले सुन लेते हैं, क्योंकि आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर दुनिया में आम तौर पर इसको झूठ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वो झूठ क्या है कि वालिदैन की जो है ना वो, यानी सारा जो फरमाबरदारी और अताअत का सारा का सारा जो फोकस है वो वालिदैन के ऊपर है, ठीक है, कि वालिदैन की बस फरमाबरदारी करनी है, वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है, वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है, ठीक है ना, इसी के ऊपर सारा का सारा फोकस है। सही है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ठीक है। सच क्या है ये आप बता दें, सच आप बता दें, क्योंकि पिछली क्लास में हम आपको समझा भी चुके हैं, और अगर ना भी समझाया होता तो भी अकल अल्लाह ताला ने आपको भी दी हुई है, तो आप भी उसको इस्तेमाल करके सच को जो है वो पा सकती हैं। इतनी आसानी हमने आपके लिए ये कर दी अल्लाह के हुक्म से कि हमने आपके सामने झूठ बता दिया कि ये झूठ है, ताकि अब आप जो है ना वो दूसरी तरफ भी देख सकें, वरना अगर ये ना पता होता कि अच्छा ये झूठ है, तो फिर आप दूसरी तरफ आपकी निगाह जा ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो क्या है भाई, सच क्या है भाई, सच क्या है? झूठ बता दिया आपको कि सारा का सारा फोकस जो है वो वालिदैन की अतात पर है, तो फिर सच क्या है? जी, क्या सच है? अल्लाह की फरमाबरदारी, ये सच है। अच्छा, अल्लाह ताला की अतात नहीं है, उन हुक्मों को नहीं मानना जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हों। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, रसूल की फरमाबरदारी, अल्लाह वालों की फरमाबरदारी, ये सच है। अच्छा, ये भी सच है कि इस वक्त दिन है, राइट? ये भी तो एक सच है ना कि इस वक्त दिन है। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताएं कि सच क्या है, तो मैं जवाब दूं कि इस वक्त दिन है, ये सच है ना? तो अब इस मेरे इस जवाब का कोई ताल्लुक होगा बात से कि इस वक्त दिन है, राइट? तो भाई जो सवाल किया जा रहा है उसके मुताबिक जवाब देना, ये तो नहीं कि आप कोई भी सच बता दें जवाब में राइट, ये इस वक्त सच ये है कि सुबह हो रही है, राइट? सच ये है कि 8 बज करके जो है वो 15 मिनट हो रहे हैं, ये सच है, 17 मिनट हो रहे हैं, ये सच है। कोई ताल्लुक होना चाहिए ना सवाल के जवाब के साथ, या जवाब का सवाल के साथ, ठीक है? तो ताल्लुक है ना, ताल्लुक के साथ जवाब दें, ऐसे नहीं, हर जवाब नहीं चलता, ठीक है? पेरेंट्स के जरिए अल्लाह की बात सुननी है, अगर पेरेंट्स अल्लाह का हुक्म के खिलाफ बात करें तो नहीं माननी है, ठीक है? तो चले, इसका ताल्लुक तो है पेरेंट्स के साथ, लेकिन इस जुमले के अंदर सच क्या है और झूठ? झूठ तो आपको बता दिया, मतलब झूठ तो आपको समझाया तो नहीं, लेकिन ये बता दिया कि ये झूठ है। सीख कर अमल करना है, वालिदैन के अतात कैसे करें वो सीखना है। पिछली क्लास में क्या बताया था? अल्लाह की अतात करनी है, और उसी की अताअत समझते हुए वालिदैन की अताअत करनी है, ठीक है ना? ये थोड़ा बेहतर जवाब है कि हमें अल्लाह ताला की अताअत करनी है, ठीक है ना? हमें अल्लाह ताला की अताअत करनी है, और वालिदैन की अताअत क्यों करनी है? क्योंकि अल्लाह ताला की अताअत की सूरतों में ये भी एक सूरत है कि वालिदैन के, अल्लाह ताला ने वालिदैन की अतात करने का हुक्म दिया है, इसलिए वालिदैन की अतात करनी, ठीक है ना? हमें असल में किसकी अतात करनी है? हमें असल में वालिदैन की अतात नहीं करनी है, हमने असल में, तो उर्दू जुबान में एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है ना बोलने का कि असल में कौन सा वाला काम करना है, ठीक है ना? तो इस सादगी, इस उर्दू के आसान समझ लें लहजे के अंदर आप बात समझ लें, अल्लाह करे समझ लें, कि हमें असल में वालिदैन की अतात नहीं करनी है, हमने असल में अल्लाह ताला की अतात करनी है, ठीक है ना? और चूंकि अल्लाह ने वालिदैन की अतात का हुक्म दिया है, इस वजह से वालिदैन की अतात करनी है, वरना वालिदैन की कोई अतात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वरना वालदैन कौन होते हैं? वालदैन ने हमें बनाया, वालदैन ने हमें खिलाया, वालदैन ने हमें पिलाया। मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है, वो भी सुन रहा है मेरी बातों को। ये नहीं कि मैं खाली जो है ना वो अपने अपने औलाद से छुपा करके आपको ये बातें कर रहा हूँ, है ना, कि मेरी औलाद को ना पता चले कहीं वो मेरी जो है ना वो अता वो ना शुरू कर दे कि हमने तो अल्लाह की अतात करनी है, अब्बू की थोड़ी करनी है। वो भी सुन रहे हैं, मेरी औलाद भी सुन रही है, ठीक है। तो हमने असल में तो अल्लाह की अतात करनी है, वालदैन की तो सिर्फ इसलिए अतात करनी है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया वालदैन की अतात करने का, ठीक है। तो जवाब और भी लिखे हुए हैं कि पेरेंट्स की वजह से लोग अल्लाह के हुक्म को भी रद्द कर देते हैं। जी, ये आप एक अनफॉर्चुनेट रियालिटी बता रही हैं, ऐसे ही होता है, इसी वजह से ये सारी बात करने की ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले प्रायोरिटी अल्लाह का हुक्म है, और सच ये भी कि पेरेंट्स का मुकाम अल्लाह के मुकाम पे नहीं रख सकते, उसके ऊपर नहीं रख सकते। सच ये है कि माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, मगर अल्लाह के हुक्मों को पामाल नहीं करना है उनकी अतात में। असल चीज़ अल्लाह की अतात है। जी ठीक है, तो असल चीज़ अल्लाह की अतात है, और वालदैन की अतात सिर्फ उस सूरत में की जाएगी कि जब वो अल्लाह ताला की अतात के खिलाफ ना हो। तो अब जो है ना वो हमारे वालदैन भी बड़े सयाने होते हैं, ठीक है ना, माँ बाप भी तो माशाल्लाह वो भी तो आखिर को मुसलमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें कौन सा बुत की परस्तिश करने का हुक्म दिया है, राइट, मैंने तुम्हें कौन सा जो है वो शराब पीने का हुक्म दिया है, ठीक है ना, मैं तुम्हें शराब पीने को तो नहीं कह रही, अम्मा हुजूर कहती है, मैं तुम्हें शराब पीने को तो नहीं कह रही, मैं तुम्हें जो है वो शिरक करने को तो नहीं कह रही, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि जरा अपनी बीवी का हाथ मरोड़ दिया करो कभी कभी, राइट, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि बेगम साहिबा को जरा जरा जो है ना वो उनको दबा करके रखो, जरा दबा के रखने का मतलब समझते हैं ना, सारे के सारे बहुएं तो समझती हैं ना, सासें जो हैं वो समझें या ना समझें, ठीक है, मैं तो समझती हैं ना कैसे उनके हाथ मरोड़ मरोड़े जा रहे होते हैं। वो जब सास बनेंगी तो वो भी बहू के हाथ मरोड़ेंगी, है ना, वो भी बहू के हाथ मरोड़ेंगी जब वो सास बनेंगी, तो क्योंकि अल्लाह का हुक्म ना उन्होंने माना, ना उनकी सास ने माना, ना किसी और ने माना, ठीक है। तो भाई असल चीज अल्लाह का हुक्म है, इस बात को याद रख लें, कब्र में काम आएगी, कब्र में काम आएगी, यहाँ पे तो काम आए ना आए आपको पता नहीं, नहीं आप कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं होता इस ये बात मानने से, है दुनिया में तो वो कामयाब होता है जो कि अपनी मनमर्जी चलाता है, हम तो कब्र की बात कर रहे हैं ना आपसे, और हशर की बात कर रहे हैं, ये कब्र और हशर में तो काम आएगी, वहां पे जा करके फिर पछताने का भी फायदा नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर तुम तो माने ना माने आपकी मर्जी है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख लो तब नजर आएगी जन्नत और दोजख, दुनिया में तो नजर नहीं आएगी तुम्हें। तो अल्लाह ताला की अतात ये असल चीज है, ठीक है, और हम अल्लाह ताला की अतात ये भी है, ये नहीं है कि सिर्फ शराब मत पियो और जो है वो बुत के सामने पूजा मत करो, सिर्फ ये अल्लाह ताला की अतात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की अतात ये भी है कि अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, जिसका जो हक है उसको वो हक दो, ठीक है ना, ये अल्लाह का हुक्म है, मौलवी साहब का हुक्म नहीं है, सास का हुक्म नहीं है, शौहर का हुक्म नहीं है, बाप का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, इन अल्लाह या अमरकुम, इन अल्लाह या अमरकुम, सही है। तो फरमाते हैं कि जिसके अल्लाह ताला ने खास तौर पर ताकीद फरमाई है, इसलिए उनकी अतात अल्लाह ताला की अतात समझ कर करनी चाहिए, कुछ और समझ के नहीं करना चाहिए कि यही अल्लाह बन गए हैं, नऊज बिल्ला, यही वालदैन जो है ना यही तो मेरे परवरदिगार हैं, यही तो मेरे जो है वो दाता हैं, और यही तो मेरे जो है ना वो बनाने वाले हैं, राइट, यही खिलाने वाले हैं, नहीं, अल्लाह खिलाने वाला है, इनके वास्ते से खिलाता है, जो अल्लाह जो है ना वो जॉब के वास्ते से खिलाते हैं ना, वही अल्लाह जो है वो जब आप छोटे थे तो वालदैन के वास्ते से खिलाता था, है ना, वो भी अल्लाह ही तो था ना जो वालदैन के वास्ते से खिलाता था, ठीक है। तो यानी जो बात वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कहें उसको मानना चाहिए, और जो उसके हुक्म के खिलाफ कहें उसे ना मानना चाहिए, उसे ना मानना चाहिए, ठीक है, उनकी उस वाली बात को जो अल्लाह के खिलाफ कहें उसको ना मानना चाहिए। कितनी दफा बोलूं इस बात को, ठीक है ना, आपके अब बच्चे तो नहीं सुन रहे कहीं, उनको छुपाएं छुपाएं उनको जल्दी से आपकी मुसीबत ना आ जाए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बच्चों को ये बात बताएं कि बेटा तुमने अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के तुम बंदे हो, तुम मेरे बंदे नहीं हो, तुम मम्मा के बंदे नहीं हो, तुम बाबा के बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, ठीक है ना। ये होती है मुसलमान माँ। और जो ऐसा नहीं बताती ना अपने बच्चों को, तो वो फिर अपने खामो ख्याल के अंदर मुसलमान होती है, वरना तो। क्योंकि एक और हदीस में है कि अल्लाह की नाफरमानी करके मखलूक की फरमाबरदारी करना जायज़ नहीं है। और मिरकात में लिखा है कि माँ बाप के जुल्म करने से मुराद दुनियावी जुल्म है, उखरवी जुल्म मुराद नहीं है। अब इस हदीस की तशरीह, इस वाली हदीस की तशरीह, कि चाहे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना करें, तो यहाँ पर दुनियावी जुल्म मुराद है, उखरवी जुल्म मुराद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यानी दुनियावी उमूर में अगरचे वो ज्यादती करें, तब भी उनकी फरमाबरदारी लाजिम है, ठीक है, कि वो तुम्हें गालियां दें, राइट। तो ये जो गालियां देना है ना, ये आपके कान को जो है वो बुरा लगेगा, आपके नफ्स के ऊपर भारी होगा, आपकी जो है वो इज्जत है नफ्स को मजरूह करेगा, ये दुनियावी जुल्म होता है, ठीक है ना। कि वालदैन जो है ना वो आपको बुरा गली कटी सुना रहे हैं, या वालदैन जो है वो आपको, राइट, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये दुनियावी जुल्म होता है, ठीक है ना। ये मुश्किल काम है ये, कि कौन सा वाला जुल्म वो दुनियावी कर रहे हैं, कौन सा वाला जुल्म वो जुल्म जो है ना वो उखरवी कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, और इस वजह से ना बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो दुनियावी जुल्म जो है ना वो मुराद है कि वो दुनियावी जुल्म करें तो करने दो उनको, है ना। एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो, जी जी जी, राइट, जो उल्टा सीधा जो है तुम्हें करने को कह रहे हैं, जी 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 बस, राइट, बस, ठीक है ना। मानना मत उनकी गलत बात, ठीक है ना, जी जी करके बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना, चुप कर जाना, ठीक है। उखरवी जुल्म का मतलब ये होगा कि वो तुम्हें जुल्म करने को कहें, वो तुम्हें जुल्म करने को कहें, ठीक है। क्या मतलब तुम्हें जुल्म करने को कहें, ये तो फिर आप लोगों से ही पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। उखरवी जुल्म क्या होता है, कि जब वो तुम्हें जुल्म करने को कहें, ये उखरवी जुल्म होता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, जब तक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यानी दुनियावी उमूर में अगरचे वो ज्यादती करें, तब भी उनकी फरमाबरदारी लाजिम है, और अगर वो दीन के खिलाफ कोई बात कहें तो इसमें उनकी फरमाबरदारी नहीं करनी चाहिए। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगरचे वो दोनों जुल्म करें, ऐसा है कि जैसे कि आपने ज़कात वसूल करने वाले के बारे में फरमाया है कि अपने ज़कात वसूल करने वालों को राजी करो अगरचे तुम पर जुल्म किया जाए, ठीक है, अगरचे तुम पर जुल्म किया जाए। जकात वसूल करने वालों, यानी जो दारुल हुकूमत से, गवर्नमेंट की तरफ से जो जकात कलेक्टर्स आए हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो वो जो तुमसे जकात मांग रहे हैं ना, तो उनको वो जकात दो, ठीक है ना, उनको वो जकात दो, क्योंकि वो उनका उनका काम क्या है, तुमसे जकात कलेक्ट करना, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना कि उनको जकात मत दो अगरचे के वो तुम अगरचे के तुम पर जुल्म किया जाए, ठीक है। क्या मतलब अगरचे के जुल्म किया जाए, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दो लाइनें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इंशाल्लाह। मिश्कात की एक शरह लम्आत में लिखा है कि इससे मकसूद ताकीद है, यानी तुम्हारे ख्याल में या बिलफर्ज अगर वो जुल्म करें, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़कात कलेक्टर्स जो हैं वो तुमसे सख्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है ना वो तुमसे ज़कात मांग रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, या वाकई वो सख्ती कर रहे हैं। एक होता है ना कि हमारे हमारे ख्याल में कोई शख्स सख्ती सख्ती कर रहा है, लेकिन असल में वो सख्ती नहीं कर रहा, बस हम जरा ज्यादा जज्बाती हैं, तो हमें उसकी जो है ना वो नॉर्मल बात भी सख्त लग रही है, तो इसको कहते हैं कि तुम्हारे ख्याल में वो सख्ती कर रहा है, दूसरे लोग नहीं समझते कि वो सख्ती कर रहा है, लेकिन आप जरा एक्स्ट्रा जज्बाती हैं, इस वजह से ना आपको उसकी नरमी भी सख्ती लग रही है। एक्स्ट्रा जज्बाती लोगों के साथ ऐसे ही होता है, कोई नरमी भी कर रहा हो तो वो भी उनको सख्ती लग रही होती है, ठीक है ना। तो ये खामो ख्याल में सख्ती कहलाती है, या वाकई वो सख्ती कर रहे हैं। वाकई सख्ती की क्या डेफिनेशन है, कि जब मेजोरिटी इस बात को एग्री कर इस बात पे एग्री करती है कि हाँ भाई ये शख्स सख्ती कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ वाकई वो सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत यही कह रही है कि वो सख्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तुम्हारे ख्याल में सख्ती कर रहे हो या बिलफर्ज अगर वो जुल्म करें भी, तब भी तुम उनको राजी करो, क्योंकि अगर वो ज़कात वसूल करने वाले वाकई जुल्म करते थे तो आप उनको राजी करने का हुक्म कैसे फरमा सकते थे। ठीक है ना, क्या मतलब कि अगर वो आपसे ज़कात की बजाय तावान वसूल करना करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो शरीयत के अंदर जायज ही नहीं है ना। ठीक है कि वो आके जो जकात के नाम पर आपसे जकात के बजाय जो है वो भत्ता वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भत्ता वसूल करना तो ये जुल्म है, और नबी अलैहिस्सलाम उस जुल्म की तो इजाजत नहीं दे सकते कि भाई चाहे वो तुमसे भत्ता वसूल करना शुरू कर दें तब भी जो है वो उनको राजी करो। राइट, ये तो नहीं, शरीयत के तो उसूल के खिलाफ हो जाएगा ये वाली चीज। तो बेसिकली सिर्फ ताकीद यहाँ पे मकसूद है कि भाई जकात तुम जरूर बिल जरूर अदा कर दो, अगरचे के जकात लेने वाले जो आए हुए हैं ना तुम्हारे पास वो तुम्हें अच्छे ना भी लगे ना, कि भाई तुमसे जो है वो तुम्हारा पैसा लेकर के जा रहे हैं, तुम्हारे जेब में से जो है वो पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, तुम्हें अच्छे ना भी लगे, ये वाली बात अच्छी ना भी लगे, फिर भी जकात दो, जकात जरूर बिल जरूर दो। ठीक है ना, इसी तरीके से माँ बाप के बारे में जो नबी रसूल है कि अगरचे के वो तुम्हें जुल्म करें, तो यहां पर भी यही मुराद है। ठीक है कि अगर तुम्हारे ख्याल में वो जुल्म कर रहे हैं, अगर तुम्हें बात उनकी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें उनकी बात नागवार लग रही है, तुम्हें उनकी बात नागवार लग रही है, फिर भी उनकी बात मान लो। ठीक है ना, ये इसका मतलब नहीं है कि वो तुम्हें हुक्म दें कि अपनी बीवी पर जुल्म करो तो तुम जो है उनकी बात मान लो, वो तुम्हें हुक्म करें कि अपने बच्चों पर जुल्म करो तो तुम उनकी बात मान लो। ठीक है, या तो वो तुम्हें हुक्म करें कि कुरान के साथ जुल्म करो तो तुम उनकी बात मान लो। क्या मतलब कुरान के साथ जुल्म करो, वालिदैन कुरान के साथ जुल्म करने का हुक्म कब देते हैं, किसकी कोई एग्जाम्पल? जब तक हम आप लोगों के जवाब पढ़ते हैं कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करने को कहें ये जुल्म है, जी हक की अदायगी में कोताही करिए, जब वो आपको हुक्म दे ना कि आप फलाने की हक की अदायगी ना करें तो ये आपको जुल्म का हुक्म देगा ना, यानी अल्लाह की नाफरमानी या किसी हकदार का हक मारने का हुक्म दें तो ये तुम पर उखरवी जुल्म है। ठीक है, उखरवी जुल्म माँ बाप कब करते हैं कि जब वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं या किसी बंदे की जो कि हकदार था उसका हक मारने का हुक्म देते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम पर आखिरी, ये तुम पर उखरवी जुल्म करते हैं वो। ठीक है ना, तो इस हदीस के अंदर उखरवी जुल्म मुराद नहीं है कि अगरचे वो तुम्हारे ऊपर उखरवी जुल्म करें फिर भी तुम उनकी फरमाबरदारी करो, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और ये दीनदार पर्देदार सो कॉल्ड पर्देदार खानदानों में कब होता है, शादी ब्याह के मौके के ऊपर, कब होता है ये, शादी ब्याह के मौके के ऊपर, कि माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद को कहते हैं ये तो शादी का मौका है ना, ये कोई सोग का मौका कोई थोड़ी है, ये कोई फौदगी कोई थोड़ी हुई है कि इसके अंदर जो है वो हम मौसीकी ना चलाएं, इसके अंदर जो है वो हम इसमें भी हम पर्दा करें, ये तो शादी ब्याह का मौका है, इसमें भी पर्दा करोगी क्या? राइट, पर्दा तो वफात के मौके पर किया जाता है ना, सोग के मौके पे, जैसे जैसे कोई कोई गैर मुस्लिम लड़की भी जो है ना वो सोग के मौके पर उनका भी एक खास किस्म का स्कार्फ होता है ना, और उनका खास किस्म का एक वो क्या कहते हैं उसको, फेस कवरिंग निकाब टाइप की चीज होती है ना, तो वो होता है ना कि जी वो बादशाह सलामत की जब इंतकाल हो गया तो मलका जो है ना वो निकाब पहन करके आ जाती है, बिल्कुल जो है ना वो खुली डुली किस्म की मलका, मौत के वक्त जो है ना वो भी निकाब पहन लेती है। ठीक है ना, अब चूंकि हमारे तो किबला वहां पर है, हमारा किबला क्या है, गैर मुस्लिम कल्चर, ठीक है, तो इस वजह से ना हमने समझ लिया कि निकाब जो है ना चूंकि वो मलका मलका मुअज्जमा जो है वो मरने के मौके के ऊपर निकाब करी हुई थी, तो हमारी भी अगर बेटी निकाब करेगी तो इसका तो मतलब है कि ये तो मौत का मौका हो गया, और तो फिर शादी ब्याह रहेगी नहीं, फिर ये तो शादी का तो फिर वो मजा ही नहीं आएगा फिर। राइट, तो इस वजह से शादी के मौके के ऊपर सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं। राइट, और कुछ जगहों पे जो है वो सारे खत्म नहीं होते, जो खानदान के गैर महरम होते हैं उनसे खत्म हो जाते हैं, राइट। खानदान के गैर महरमों से पर्दा खत्म हो जाता है, और सड़क के गैर महरमों से जो है वो पर्दा बरकरार रहता है। तो ये मुख्तलिफ दर्जात हैं, किसी का किसी कोई किसी दर्जे के ऊपर बेपर्दगी कर रहा है, अल्लाह का हुक्म तोड़ना, कोई किसी दर्जे पे अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है, कोई किसी दूसरे दर्जे पे अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है, राइट। क्योंकि नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, अल्लाह का हुक्म है वो हुक्म ही कैसा जो तोड़ा ना जाए, है ना, वो हुक्म ही कैसा जो तोड़ा ना जाए, ठीक है ना, वो वादा ही कैसा जो पूरा कर दिया जाए, वो अमानत ही कैसी जिसमें खयानत नहीं की जाए, राइट। ये तो मजा ही नहीं आता फिर, ये तो बोर जिंदगी हो गई ना, बोर्डम, राइट, ये तो बोरिंग बोरिंग हो गई। ये तो ये क्या बात हुई कि भाई आप सच बोले चले जा रहे हैं, झूठ बोल ही नहीं रहे, राइट, अमानत रखवाई तो उसके अंदर खयानत नहीं कर रहे हैं, ये तो बोरिंग बात हो गई ना। जैसे बच्चे नहीं होते कुछ अजीब इस किस्म के, अल्लाह रहम करे उन बच्चों के ऊपर, उनके वालदैन के ऊपर, राइट। बात मानना ना वो फैशन के खिलाफ लगता है, राइट, वो उनकी इज्जत नफ्स के खिलाफ होता है कि उनको जो कहा जा रहा है करने के लिए अगर वो ही कर लेंगे तो फिर ये तो कुछ ना, मेरी खुदी किधर जाएगी फिर उसके बाद, राइट। वो तो अल्लामा इकबाल तो कह के मर गए ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रदा क्या है। तो मैंने अगर किसी दूसरे की बात मान ली तो खुदी किधर जाएगी मेरी, फिर इस वजह से बात ही नहीं मानते, राइट। तो इसी तरह हम मुसलमानों का भी यही हाल है, अल्लाह का अल्लाह की बात मान ली तो फिर हमारी खुद ही किधर जाएगी फिर, ठीक है। तो भाई ये सब तो मरने के बाद भी पता चलेगा और दुनिया में भी पता चल ही जाता है, अगर चाहे हम माने या ना माने। एक लड़की का सवाल था कि उसके घर वाले लोन लिए हैं, इससे पहले उसका नमाज कुरान में दिल लगता था, लेकिन जब से लोन लिए हैं उसके नमाज कुरान में दिल नहीं लगता, तो उसके लिए वो क्या करें। उसकी तो कोई गलती नहीं है क्योंकि घर वालों को समझा रही है, मगर घर वाले नहीं मान रहे हैं ये भी कि हराम खाने से इबादत कबूल नहीं होती है, तो वो क्या करे जिससे कबूल हो और उसके घर वालों ने भी मजबूरी में लिया है। उस लड़की का कोई शेख है, उस लड़की का कोई शेख है ये भी बता दें आप, नहीं है ना, तो फिर उसका शेख कौन होगा, तो उस लड़की का शेख कौन है, शैतान, ठीक है ना। तो वो शैतान जो है ना उस लड़की के साथ फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, उसने जो है ना वो उसको ये बावर करा दिया, देखो हदीस में तुमने पढ़ा था, तुमने किसी बयान में सुना था ना कि हराम खाने की वजह से इबादत कबूल नहीं होती, अब जो है ना वो चूंकि लोन ले लिया है ना, अब जो है ना वो बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब कुछ जो है ना वो बर्बाद हो गया, अब तो तुम्हारा इबादत में तुम्हारा दिल है? वो दिल लगता क्या, वो शैतान वसवसे डाल रहा है उसके दिमाग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वही उसका शेख है। तो अब शेख साहब जो है वसवसे डाल रहे हैं उसके दिमाग के अंदर कि कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, अब तो बस हो गया, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह का उसी के ऊपर बवाल पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने साथ साथ ये भी लिख दिया है कि घर वालों ने भी मजबूरी में लोन लिया है, ठीक है ना। तो अब मजबूरी किस किस्म की मजबूरी है, क्या अपनी तरफ से बनाई हुई मजबूरी थी, क्या हकीकी मजबूरी थी, क्या उनकी जान जा रही थी कि वो जिसमें मौत मौत के अंदेशे के ऊपर जो है वो शराब पीने की इजाज़त हो जाती है, या सुअर खाने की इजाज़त हो जाती है, या कलमा कुफ्र कहने की इजाज़त हो जाती है जब मौत का खौफ होता है तो, राइट। किस दर्जे की मजबूरी थी ना, कौन सी मजबूरी थी। मजबूरियां तो हजार किस्म की होती है, मेरी मजबूरी है कि क्रिकेट खेलना है, मैं तो सैटरडे मॉर्निंग क्रिकेट खेले बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, ये मेरी मजबूरी है ना, तो मेरी मर्जी है भाई, मैं क्रिकेट खेलना मैंने अपनी मजबूरी बना ली, सही है ना, कौन डिसाइड करेगा ये वाली बात, ठीक है। तो ये सारी तफसील जो है ना ये समझें इन बातों को ना, ठीक है। तो शैतान जो है ना ये मर नहीं गया, इसने जो है ना वो आखिर वक्त तक के लिए अल्लाह ताला से छूट ली गई है, वो हम सब के पीछे लगा हुआ है, तो इसके अल्लाह ताला ने जो हल बताए हैं तो उसके मुताबिक फिर काम करें ना। अच्छा बहरहाल, दूसरे किसी ने लिखा है कुरान करीम फैशन के बतौर हिफ्ज करवाना, अपने बच्चों को माहौल न देना कि वो इस हिफ्ज को बरकरार रख सकें भी आजकल कुरान पर एक जुल्म है, इसी तरह उसकी आयत मनमर्जी के दीन के लिए इस्तेमाल करना, उसकी आयत भी मनमर्जी के दीन के लिए इस्तेमाल करना ये भी कुरान मजीद के साथ जुल्म है, और कुरान मजीद के हुक्मों के खिलाफ करना ये कुरान मजीद के साथ जुल्म है, ठीक है। कुरान मजीद को छोड़ करके किसी और जाबता हयात को फॉलो करना ये कुरान मजीद के साथ जुल्म है, ठीक ठीक है, अपने बच्चों को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पीएचडी करवा देना, लेकिन कुरान पढ़ना तक ना आता हो, कुरान के जो है वो अल्फाज का कुछ भी बुनियादी तर्जुमा भी समझ में ना आता हो, ये कुरान मजीद के साथ जुल्म है ना, ठीक है ना। और ये कौन करवाते हैं, ये सारे के सारे काम कौन करवा रहे होते हैं, माँ बाप करवा रहे होते हैं ना, सगे माँ बाप करवा रहे होते हैं ना ये वाले सारे के सारे काम, ठीक है ना। तो कितना कुरान मजीद के साथ जुल्म, अल्लाह ताला के ऊपर तो हम जुल्म नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को अल्लाह का हक ना देना ये अल्लाह ताला के साथ जुल्म है ना, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को उनका हक ना देना ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म है ना, ठीक है। तो बहरहाल तो अपने ये तो हो गई, चाहे अब उसके बाद अगली हदीस थोड़ी सी शुरू कर लेते हैं। बात ये एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सबसे बेहतर रोज़ी अपनी कमाई है और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई में दाखिल है, ठीक है। सबसे बेहतर रोज़ी अपनी कमाई है, यानी अपने हाथ से कमाना, ठीक है, और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई में दाखिल है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बाप ज़रूरतमंद हो तो बेटे के माल से खाने में मुजायका नहीं है, ठीक है ना। जब बाप ज़रूरतमंद हो, यानी बाप की अपनी कमाई ना हो, बाप का अपना जो है वो सोर्स ऑफ इनकम वगैरह ना हो, तो बेटे के माल से खाने में मुजायका नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें, फजूल खर्ची ना करें कि ये तो मेरे बेटे का माल है, राइट, अब तो मैं उसको उड़ाऊंगा, नए नए जो है वो आईपॉड खरीद, पता नहीं क्या क्या होते हैं, आईपैड होते हैं और टैब होते हैं और फलाने जो है वो मैं ये माह में सैर पे जाऊंगा, राइट। फजूल खर्ची ना करें, अगर बाप मालदार होने के बावजूद बेटे का माल लेता है तो वो उस पर कर्ज है। अल्लाह अकबर, ये लगता है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ना, ये नाउज बिल्ला मैं बात समझाने के लिए खा रही है, बेअदबी वाली बात कर रहा हूँ, बात समझाने के लिए, लगता है इनको जो है वो सियासत नहीं आती थी, हैं इन्होंने कैसी यानी खतरनाक किस्म की बातें कह दी हैं, इनको लोग नाराज हो जाएंगे, लोग रूठ जाएंगे, लोग जो है वो मेरी जमात में नहीं आएंगे, मेरे मुरीद नहीं बनेंगे, ये इनको फिक्र लगता है कोई नहीं होती थी, इनको ये वाली फिक्र, भीड़ लगता है इनको नहीं चाहिए थी, इनको लगता है भीड़ से जो है ना वो गर्ज नहीं थी कि लोग भीड़ लगा ले मेरे पास आकर के, ठीक है ना। ऐसे खतरनाक किस्म की बातें कह रही कि अगर बाप मालदार होने के बावजूद बेटे का माल लेता है तो वो उस पर कर्ज है, कौन कहता है इस तरह की बातें, लेकिन कभी सुनी आपने दुनिया के जो सबसे मकबूल माशाल्लाह यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास कभी आपने ऐसी बात सुनी। यही कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है और इसी पर फतवा है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन है, ये नबी अलैहिस्सलाम की बातों को समझाने वाले हैं, अपनी तरफ से शरीयत बनाने वाले नहीं है, ये शरीयत बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है, शरीयत समझाने वाले हैं सिर्फ, ठीक है। और इसी पर फतवा का मतलब क्या होता है कि इसी के ऊपर इत्तेफाक है मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का, ठीक है ना, जो मुफ्ताब ही कौल, राइट, इसी के ऊपर इजमा हो गया उस वक्त के जो जो फुकहाए कराम जो ये हदीसों की तशरीहात लिख रहे थे, तो उनका फतवा इसी चीज के ऊपर था, मेजोरिटी इसी के ऊपर मुतफिक हो गई, इजमा हो गया इसके ऊपर, एक ये नहीं कि किसी मुफ्ती साहब ने चलते फिरते जो है वो फतवा डाल दिया इसके ऊपर। ये मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में फिकह की किताब पढ़नी शुरू करी थी तो कुदूरी शरीफ ही गालबन पढ़े थे, तो उसके अंदर जो है वो इमाम अबू यूसुफ ने ये कहा और इमाम अबू यूसुफ ने ये कहा, इमाम अबू हनीफा का ये कौल है, इमाम मोहम्मद का ये कौल है और फतवा इनके कौल पर है। तो मैं यही सोचता रहता था शुरू शुरू में कि इमाम अबू हनीफा बड़े बहुत बड़े थे, इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े थे, इमाम मोहम्मद बहुत बड़े थे, लेकिन ये मुफ्ती साहब जो है ना ये तो सबसे बड़े हैं, इसका मतलब है क्योंकि इन्होंने जो फतवा दे दिया तो असल तो बात उसी की है जिन्होंने फतवा दे दिया, तो असल बड़े तो फिर मुफ्ती साहब हो है ना, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि जी मुफ्ती साहब फतवा देते हैं, तो बाद में बात समझ में आई कि मुफ्ती साहब कोई एक अलग किस्म की मखलूक नहीं थे कि जो कि ना फतवा दे देते थे कि बाबू अबू हनीफा सही है या बाबू यूसुफ सही है या मोहम्मद सही है, ऐसा नहीं था, बल्कि कंसेंसस जो है ना वो इसी पर है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि बाप के लिए बेटे के माल में कोई हक नहीं सिवाय इसके कि उसे खाने पीने कपड़े की ज़रूरत हो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हम इसी पर अमल करते हैं और यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। ठीक है, वो लोग तो कई 100 साल पहले इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो हमारे ही ज़माने के थे ना, यानी जो हमारे ज़माने के तमाशे जो है ना, हमारे ज़माने के तमाशे, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब जिंदा थे दुनिया के अंदर तो उस वक्त ये सारे के सारे तमाशे मौजूद थे। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो उस ज़माने में थे जिस ज़माने में मुसलमान गालिब थे, सही मानों में हम इस्लाम पे अमल किया करते थे और नबी अलैहिस्सलाम को भी दुनिया से पर्दा फरमाए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो इस्लाम वॉज द सुपर पावर, वॉज द ओनली पावर इन द वर्ल्ड, राइट। वो ज़माना था, तो उस ज़माने के हालात तो ज़ाहिर है आज के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हमारा ज़माना जो है ना ये एक जैसा ज़माना है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बहुत कम फ़र्क आया है इतने अरसे में। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को हमें दोबारा से याद दिलाया कि ऐसे ही है, इवन इस ज़माने के अंदर भी ऐसे ही समझा जाएगा और ऐसे ही किया जाएगा जैसे कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमा के गए। ठीक है, तो ये जो यानी अब आप तो किताब पढ़ रही हैं ना, या आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ानदान की चीज़ें कुछ देखी हुई होंगी, लेकिन हमारे पास तो लोग आते हैं अपने अहवाल बयान करते हैं ना। ठीक है, तो क्या बताऊँ, मतलब क्या याद आपको बताया कि कितना मेंटल टॉर्चर किया जाता है औलाद को, कितना मेंटल टॉर्चर किया जाता है औलाद को कि देखो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, अब तुमने जो है ना वो हमें पे बैक करना है, और पे बैक कैसे करना है, जो हम तुम्हें कहेंगे करने के लिए तुमने वही करना, क्योंकि हमने तुम्हारी जो है ना वो कॉलेज की फीस अदा करी है, हमने तुम्हारी जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस अदा करी है, और हमने तुम्हारी ये अदा करी है, अब तुम हमें पे बैक करो, राइट, अब तुम हमें रिटर्न करो हमने। ठीक है, एक लड़का इसी तरीके से हमारे पास आया, मैंने कहा जब जब आपके वालिद साहब जो है ना, यानी वो इसी इसी में था ना कि मैंने बस वो हर वक्त जो है ना उसको खुदकुशी के ख्यालात आते रहे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और मुझे जो है वो ये नहीं हो रहा है क्योंकि तो मेरे बाप ने मेरे ऊपर खर्चा किया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यानी एक अजीब मेंटल पेशेंट बना हुआ था वो बंदा ना। ठीक है, मैंने उसको समझाया कि भाई जब आपके अब्बा हुजूर जो है ना वो बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जो उनकी खिदमत करेंगे तो क्या उस वक्त आपकी आपकी यही होगी कि भाई आपके अब्बा ने जो है वो आपको पैसे दिए हैं, इस वजह से आप जो है वो उनकी बुढ़ापे के अंदर उनकी जो है वो खिदमत कर रहे हैं, उनकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, राइट। नहीं, मैं इस वजह से तो नहीं करूंगा, मैं तो इस वजह से करूंगा ना कि वो मेरे बाप हैं, वो मेरे बाप हैं, इस वजह से मैं उनकी खिदमत करूंगा ना जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई इसी तरीके से जब आप अपने बाप की औलाद थे तो उन्होंने इसलिए आपके ऊपर खर्चा किया क्योंकि आपकी आप उनकी औलाद हैं, राइट। आपके बाप ने आपके ऊपर क्यों खर्चा किया, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं, इस वजह से खर्चा किया ना, इस वजह से तो नहीं खर्चा किया कि मुझे जो है वो इसका रिटर्न चाहिए, मुझे इसका जो है वो पे बैक चाहिए, राइट। और अगर कोई बाप वाकई रिटर्न की नीयत से करता है तो उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान और कौन हो सकता है, उसको क्या पता है कि उसका बेटा जो है वो जिंदा भी रहेगा उसको पे बैक करने के लिए, नहीं पता उसको, उसको क्या पता है कि वो खुद जिंदा रहेगा कि जब वो बूढ़ा होगा तो जो है वो उसका बेटा उसको पे बैक करेगा, उसको जवाब देगा, उसको यानी उसको वापस करेगा, ये सारी चीजें उसको खुद पता है कि वो जिंदा रहेगा, नहीं पता है। जिस चीज का कुछ पता ही नहीं है तो उस बुनियाद पर आप कोई यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर, आपको कुछ पता ही नहीं है, जिंदा भी रहना है बेटे ने, जिंदा भी रहना है आपने, आपने खुद ने कि नहीं, राइट। और फिर उसने कमाना भी है कि नहीं कमाना, पता क्या पता आपका बेटा जो है वो एक्सीडेंट में अपाहज हो जाए, बेशक जिंदा है आपका बेटा आपके बुढ़ापे में लेकिन वो अपाहज हो चुका है, वो आपको कैसे रिटर्न करेगा कोई चीज, राइट। और 10,000 किस्म के जो है वो सिनारियोज हो सकते हैं। तो भाई बेटे के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हैं तो आप उसके उस क्योंकि आप उसके बाप हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह ने आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है औलाद की, इस वजह से आप उसके ऊपर खर्च करें ना। इस वजह से कोई थोड़ी कि मुझे जो है वो वापस चाहिए, इसका रिटर्न दुनिया के अंदर, इसका रिटर्न चाहिए, आखिरत के रिटर्न के लिए करो। अल्लाह के हुक्म को समझ करके करोगे तो आखिरत में तुम्हें मिलेगा सब कुछ, 100% मिलेगा, ठीक है। तो बेटा भी इसी वजह से फिर बाप की खिदमत करे ना, क्योंकि भाई अल्लाह का हुक्म है, राइट। और मुझे इसके बदले में बाप क्या दे सकता है, बाप की खिदमत करने में क्या बाप दे सकता है उसको कुछ? बाप ने तो उसको, बाप ने तो मर जाना है, बूढ़ा बाप उसको क्या 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 रिटर्न करेगा? अल्लाह से अजर की उम्मीद के ऊपर बाप की खिदमत करेगा ना, तो बापों को क्या हो जाता है? और यही होता है असल में, ये जो सारे के सारे औलादों ने अपने माँ बाप को जो है ना वो खड्डे से लगाया हुआ है ना, खड्डे से लगाया हुआ है, राइट। क्या मतलब इसका कि उनको अबैंडन कर दिया है, उनको जो है वो ओल्ड पीपल्स होम्स जो है वो इवन, यानी पहले तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ये खौफनाक चीजें होती थी हैं, बुढ़ापे के बाद जो है वो आप ओल्ड पीपल्स होम में जाएंगे, आपके औलाद आपको मुंह भी नहीं दिखाएगी अपना। अब तो ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज शुरू हुई है, इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज शुरू हुई है कि मुसलमान औलादों ने अपने माँ बाप को जो है वो बूढ़ों के खानों के अंदर फेंका हुआ है, राइट। और खुद जो है वो किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, खुद जो है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, खुद कहीं भी बैठे हैं, या खुद पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन बस दादा हुआ है वहां पे। बेगम साहिबा बर्दाश्त नहीं करती, सास को उठा के डाल दिया रही ओल्ड पीपल्स होम के अंदर। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, मैं ही नहीं कह रहा हर केस में ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है कि माँ बाप ने खुद इस किस्म की हरकतें करी थी अपने औलाद के साथ, कि जिसकी वजह से उनको यह दिन देखना पड़ रहा है, राइट। बहरहाल क्लास का तो वह खत्म हो चुका है, तो बस आपके मैसेज बहुत लंबे लंबे आए हुए, तो पढ़ करके फिर हम अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। कि एक सवाल था कि मेरे अबू घर पर, भाई बहुत पर्सनल किस्म के सवाल आप ना किया करें कि दूसरे भी समझ जाएं कि आप, आपके घर के हालात चल रहे हैं। बहरहाल अब आपने लिख दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा, या डिलीट कर दें जल्दी से अगर आप चाहती हैं कि आपके पर्सनल हालात दूसरों को ना पता चले। यानी ऐसे तो नहीं है कि आप इतने स्पेसिफिक बात लिखी है कि जिसको सुन करके फिर अगला बंदा समझ जाए कि भाई आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सवाल यहाँ पे नहीं किया करें, ठीक है। वो व्हाट्सएप के ऊपर तरीका है उसका सवाल भेजने का। चलो अच्छा, आपने डिलीट कर दिया। तो किसी ने क्या कहा, हाँ इन्होंने जैसे गुमी बात लिखी है कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई की तालीम पर खर्च किया, इसके बाद भाई भाभी उसको टॉर्चर करते रहे कि हमने ये किया वो किया, अब तुम हमारी औलाद के लिए करो, और इसने अपनी बीवी को भाभी की वजह से तलाक दे दी। अब वो भाई भाभी के बच्चों पर खर्च कर रहा है उनको जी, उनको तालीम के लिए जो है वो दूसरे मुल्क भेजना है, तो वो अपने, तो माँ बाप, तो माँ बाप इवन बड़ा भाई और भाभी भी जो है ना वो टॉर्चर करते हैं, ठीक है ना। और फिर वो अपना काम निकालते हैं। भाई जब अल्लाह पिक्चर से निकल गया है ना, अब कोई पता नहीं कि ये जो भाई भाभी जो टॉर्चर कर रहे हैं और जो उससे काम कर रहे हैं ना, वो माशाल्लाह शायद किसी का दर्स भी सुनते होंगे, और जो है ना वो किसी वो मस्जिद जाके नमाज भी पढ़ते होंगे, और जो है वो और भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाला दीन पे भी अमल करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन टॉर्चर अपनी अपनी जगह, वो तो हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा दीन है, ये हमारा प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो आजकल तो वैसे भी दीन की हवाएं चल गई हैं, तो दीन हो या ना हो, बहरहाल तो ये होता है, ठीक है ना। यानी एहसान करते हैं और फिर उसको जतला जतला करके अगले बंदे को नफ्सियाती मरीज बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि चाहे दुनियादार हो उनका भी अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, चाहे दीनदार हो उधर भी अल्लाह ताला के हुक्म क्या चीज होते हैं, अल्लाह से वास्ता वैसे ही वास्ता जैसे कि काफिरों का अल्लाह से वास्ता होता है, राइट। गॉड इज देयर फॉर मी वाला वाला मामला, ठीक है ना। गॉड इज देयर फॉर मी, राइट। गॉड्स अहकाम क्या हैं, गॉड्स कमांड्स क्या हैं, गॉड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, हु केयर्स, ठीक है ना। हाँ लेकिन गॉड इज देयर फॉर मी, तो ये किसका दीन है? ये मुसलमान का तो दीन ये नहीं है ना, राइट। मुसलमान का दीन तो ये है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से शरीयत आई है, अल्लाह ताला ने हिदायत भेजी है, उस हिदायत में मैंने अमल करना है, और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर अमल करोगे तो कामयाब होगे, वरना नहीं कामयाब होगे, वरना गॉड विल नॉट बी देयर फॉर यू, ही विल नॉट सेव यू फ्रॉम जहन्नम, ही विल नॉट सेव यू फ्रॉम जिल्लत और रुसवाई, राइट। ये है दीन इस्लाम। और दीन क्रिश्चियनिटी क्या है? गॉड इज देयर फॉर मी नो मैटर वॉट, राइट। एंड हिंदू का दीन क्या है? ये इसी किस्म की उल्टी सीधी बकवास, ठीक है। हम अपने दीन को समझे तो सही ना, कम से कम कि हमारा दीन है क्या, ठीक है ना। बाकी तो बाद में बात होगी। आप जो बात डिटेल्स में बताते हैं वो कोई नहीं बताता। चले, शुक्र है आप, अल्लाह ताला आपके गुमान को जो है वो सच्चा कर दे। करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए हम सबके ऊपर और हमें अपने बख्शे बख्शाए और मकबूल बंदे बंदियों में शामिल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।